है कि नहीं? सामान्य बात है, श्रेय लेंगे हम ना। एक छोटे मोटे हम किसी मिनिस्टर को लेके आते हैं या फिर कोई कोई बड़ा आदमी को लेके आते हैं तो उसके आसपास घूमते हैं हम, माड़ा माधा माणूस है मैं आंडलेला, तो हम इंट्रोड्यूस इसको करते बड़ा आदमी को, हम उसका श्रेय लेते हैं, वी टेक द क्रेडिट। अगर इस मंदिर को हमने बनाया होगा या इस मंदिर के लैंड को अगर हमने लाया होगा, हमें लैंड मिला होगा, तो उसका श्रेय लेते हैं ना। हर चीज का हम श्रेय लेते हैं इस दुनिया में। मैं एक मंदिर में गया था जहां एक पंखा लटका था, उस पंखे के तीनों ब्लेड पे तीन लोगों का नाम था। तो जान मुझे कभी कि पंखा वाले बंद करते ताकि नाम दिखे। तो श्रेय लेना, क्रेडिट लेना, ये नॉर्मल चीज है कि नहीं? आजकल लोगों को दूसरे की पड़ी नहीं, अपनी पड़ी होती है। आजकल का जमाना सेल्फी का जमाना है ना, सब लोग सेल्फी लेते हैं। फायदा हो उसका, क्या नुकसान हो? मैं उसके बगल में था, मैंने फोटो निकाल लिया, है ना। तो आज के इस आधुनिक युग में, कलयुग में, जहां पर हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को का क्रेडिट लेता है, भले उसने किया हो या छोटा किया हो या पूरा किया हो, तो सोचिए ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन को जिसने स्थापित किया, जिस भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये हरे कृष्ण आंदोलन एवं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार हुआ, भगवान का वो कलयुग का अवतार इस धरती पर जो आए हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको जिसने लाया उसको क्रेडिट, किसका कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना? सही है ना? चैतन्य महाप्रभु को आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक दुनिया में लाने का क्रेडिट एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वो क्रेडिट लेता नहीं है, वो है अद्वैत आचार्य। तो फिर इससे अभी मैं शुरुआत करता हूं आपका कनेक्शन से। तो अद्वैत आचार्य जी है, ये भगवान स्वयं के अवतार है, लेकिन एक अद्भुत रूप में इस कलयुग में प्रकट होते हैं। देखिए भगवान की जो लीला है उसको तत्वतः जानना आवश्यक है। भगवान प्रत्येक चीज को क्यों करते हैं और जैसे करते हैं वो शास्त्र में वर्णित है। कुछ लोगों का भ्रम होता है कि भगवान ने ऐसे, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया महाभारत में, प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे क्यों किया रामायण में। तो अगर आप टीवी देखेंगे तो फिर ये प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन शास्त्र पढ़ेंगे तो शायद ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र में उसका वर्णन भी आता है कि क्यों किया। क्योंकि शास्त्र जो है ये विधि विधान के अनुसार आचार्यों ने अपने टीका पर आधारित प्रत्येक लीला को तत्वतः जान लिया है और उसे विस्तृत रूप में वर्णन किया है। तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं प्रायशः अकेले आते हैं। अकेले का मतलब वो आते हैं और उनके भक्त आते हैं, जैसे वराहदेव आए, वामन देव आए, नरसिंह भगवान आए, उसके बाद मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि इत्यादि, कृष्ण भगवान आए, साथ में बलराम जी भी आए, लेकिन कृष्ण भगवान का मेन रोल था। प्रभु रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण भी थे। लेकिन देखिए इस कलयुग को थोड़ा गौर से देखेंगे कि भगवान जब आते हैं अकेले नहीं आते, पूरा टीम को लेके आते हैं। इसे कहते हैं पंच तत्व, पांच लोग साथ में आते हैं। इन पांच लोगों में तीन तो भगवान ही है और एक भगवान की अंतरंग शक्ति है और पांचवा जो भगवान के शुद्ध भक्त है। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में सब जगह पर डबल पावर चलता है कि नहीं? लेकिन ये डबल नहीं, ये पांच पावर वाला चीज है। यहां पर क्यों है ऐसा पांच पावर लेके आए? क्योंकि भगवान स्वयं इस कलयुग में भगवान के रूप में नहीं आते, एक भक्त के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? क्यों भक्त के रूप में आते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि मैं भगवत्ता दिखाऊंगा तो लोग उस भगवत्ता से ज्यादा कुछ सीखेंगे नहीं। लेकिन मैं भक्त के रूप में आऊंगा, अपने खुद के जीवन आचरण से सिखाऊंगा भक्ति कैसे करना है। क्योंकि कलयुग के लोगों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ सिखाना पड़ता है ना। तो इसीलिए एक ही बार नहीं, तीन रूप में भगवान आए और पंचतत्वों में तीन भगवान का वर्णन किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु, यहाँ पर चैतन्य महापुरुष नित्यानंद प्रभु का दो ब्यूटीफुल अच्छा दोनों विग्रह यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में आपके दिखते होंगे। दोनों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है, हाथ ऊपर उठा के क्या कर रहे हो, सबको हरिनाम करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उनके साथ में और एक भगवान के रूप आए हैं, वो है अद्वैत आचार्य। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पांच तत्व क्या है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, ओरिजिनल भक्त, एक्सपेंशन भक्त और अवतारी भक्त, तीसरा अद्वैत आचार्य, चौथा भक्त भगवान की शक्ति श्रीमती राधारणी अंतरंगा शक्ति परम भक्त है, और शुद्ध भक्त नारद मुनि के रूप में श्रीवास ठाकुर आए। ये पांच रूप में भगवान जो है इस कलयुग में अवतरित हुए और पांचों ने मिलकर इस आंदोलन की स्थापना की और उसका प्रचार किया। लेकिन ओरिजिनल कहां से हुआ, श्री अद्वैत आचार्य से। ये इस कलयुग में पहले आए, इन्होंने पूरा निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद एक पूरी तरह से एक निर्णय पर पहुंचे कि यहां पर अकेले से नहीं होगा, कलयुग में यहां पर सबसे पावरफुल ओरिजिनल भगवान को बुलाना पड़ेगा, पूरा संकीर्तन आर्मी खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके कलयुग में कुछ असर होगा लोगों का। तो ये श्री अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव तिथि है। देखिए अद्वैत आचार्य के आज के जयंती से चैतन्य महाप्रभु के महोत्सव का जो है शुरुआत होता है। अभी अद्वैत आचार्य जी की आज जयंती है, अगले हफ्ते में नित्यानंद प्रभु की जयंती आएगी, उसके बाद आगे चलकर फिर मार्च के अग्रज में गौर पूर्णिमा या चैतन्य महाप्रभु की जयंती आती है। तो आज से शुरुआत होता है, श्री गणेश आज से होता है गौरांग महाप्रभु के महाउत्सव का। तो अद्वैत आचार्य के जीवन पे कुछ चर्चा करेंगे हम, कुछ लीलाओं का हम जो है डिस्कशन करेंगे। अद्वैत आचार्य के बारे में सबसे पहले जाना आवश्यक है कि हम ये इतना त्योहार क्यों बनाते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में। एक डिवोटी मुझे पूछ रहे थे, प्रभु जी हमारे हरे कृष्ण मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है त्योहार, ये हफ्ते में ये हो गया, वो हफ्ते में ये है। तो देखिए भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जो एक मार्गदर्शिका है भक्तों के लिए, मैनुअल कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को श्रद्धा से उठते हुए प्रेम भाव तक जाना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, कैसे जागृत करना है, इसका पूरा विधि विधान भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो 64 अलग अलग विधि विधानों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या एक भक्त को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 64 आइटम्स। उस 64 आइटम में कुछ ऐसे आइटम है इसका वर्णन आता है कि कैसे एक भक्त को अपने जीवन में भगवान की जन्म तिथि को मनाना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए, श्राद्धा गोविंद भगवान की जय, कैसे एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, कैसे भगवान के जन्म तिथि का और महोत्सव मनाना चाहिए, कैसे महान वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव जयंती या पुण्यतिथि जो बोलते हैं तिरोभाव, उसको मनाना चाहिए। क्यों कहा गया है, क्योंकि हर एक दिन जो है एक सामान्य दिन होता है जिसमें हम भक्ति करते हैं, लेकिन इस दिन भगवान की जयंती हो या किसी आचार्य की जयंती हो या फिर एकादशी हो, उस दिन भक्ति करने से ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा एक तरह से उत्सुकता होती है और बहुत उत्तेजन मिलता है अपने भक्ति को। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन सब तिथियों को भक्तों को फॉलो करना चाहिए, और कैसे फॉलो करना चाहिए, बड़े हर्ष उल्लास से, ताकि उस दिन का जब आप जब करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आजकल का दुनिया सब फायदा नुकसान में चलता है ना, कि कितना फायदा मुझे मिल रहा है, आज मंदिर में जाऊंगा तो क्या मिलने वाला है, है ना, या आज ऑफिस ये जॉब ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये कॉलेज जाऊंगा तो क्या फायदा मिलेगा। तो हमेशा हर चीज पर हमारा एक ही मकसद होता है, कितना मुझे मिलेगा, कितना लॉस होगा। तो ज्यादा गेन जहां पर है वहां जाते हैं हम। तो इसलिए कहते हैं कि जब ऐसे दिन आते हैं ना, इसमें ज्यादा हर्ष उल्लास से जब मनाएंगे तो भक्ति में ज्यादा प्रगति करेंगे। तो अद्वैत आचार्य के बारे में ये जानकारी आती है चैतन्य चरितामृत एवं चैतन्य भागवत में। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज छठे अध्याय आदि लीला में पूरा एक पूरा चैप्टर अध्याय अद्वैत आचार्य के बारे में कहते हैं, क्या उनका तत्व है, क्या उनकी लीला है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य कौन है, उनकी स्थिति क्या है। तो ऐसा वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य ये जो है दो स्वरूप है इनमें, एक है महाविष्णु और दूसरा है सदाशिव। महाविष्णु जो है ये इस जगत के ओरिजिनल सबसे पहले पुरुष है। महाविष्णु के बाद फिर गर्भोदक्षाय तथा बाद में शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो ओरिजिनल पुरुष इस संसार के जो है वह है महाविष्णु, वो ही अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं। और उसी तरह आध्यात्मिक जगत में ओरिजिनल जो शिव जी है सदाशिव, वो भी और महाविष्णु दोनों मिलकर ये अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए। ये स्थिति जो है चैतन्य चरितामृत में उल्लेख उसका किया गया है। तो जैसे हम बता रहे थे पंचतत्वात्मकम कृष्णम, तो अद्वैत आचार्य भक्त अवतारम, भक्त का एक अवतार है। तो अद्वैत आचार्य का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, भारत काफी बड़ा था उस समय। आजकल भारत एक प्रांत हो गया है, लेकिन जब परीक्षित महाराज राजा थे 5000 साल पहले, पूरा जगत भारतवर्ष था। सारे लोग जो परीक्षित महाराज का झंडे के नीचे हो अपना कार्य कर रहे थे। अलग अलग राज्य था लेकिन सब परीक्षित महाराज को महाराजा मानते थे। अपने अपने राज्य कर रहे थे लेकिन महाराजा कौन है, परीक्षित महाराजा। तो उसी तरह ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के पहले कुछ 50 साल पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पहले अद्वैत आचार्य जी का अवतरण हुआ। उनके माता पिता थे, पिताजी का नाम था कुबेर पंडित, माता का नाम था नाभा देवी। तो काफी साल तक उनको कुछ पुत्र नहीं हुआ कुबेर पंडित जी को। वो शिव जी के बड़े अच्छे भक्त थे, उन्होंने काफी तपस्या की, प्रार्थना की। शिव जी काफी मंदिर अच्छा था, वहां पर नवग्राम श्रीहट्ट में था बांग्लादेश में। तो वहां प्रार्थना की तो शिव जी प्रकट होकर कहे कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और इसी उपलक्ष में बाद में श्री अद्वैत आचार्य का जो है जन्म हुआ। तो अद्वैत आचार्य जी जो है उनका आने का एक लक्ष्य है, कुछ साधन है। क्या साधन है हम बताएंगे आगे चल के। तो नवग्रह श्री हाट में जो है अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ। और ऐसा कहा गया है कि बचपन में वो जिस नवग्राम जिस गांव में रहते थे वहां पर एक राजा थे। तो अद्वैत आचार्य एक छोटे बच्चे के रूप में हमेशा खेलते थे। उनका एक बड़ा परम मित्र था जो राजा का पुत्र था, वो दोनों अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, हमेशा खेलते थे। खेलते खेलते एक दिन वो मंदिर पहुंच गए, मंदिर था दुर्गा देवी का मंदिर। तो मंदिर जाने के बाद निश्चित रूप से ये राजा के लड़के ने दंडवत प्रणाम किया देवी को, लेकिन अद्वैत आचार्य ने प्रणाम नहीं किया। तो उसने कहा अरे क्या खड़े हो, प्रणाम करो, देवी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है सब ठीक है। तो बहुत फोर्स किया कि आप दंडवत प्रणाम करो, ये उल्लंघन है जो विधि विधान का कि आप मंदिर में आए दंडवत प्रणाम नहीं करे माता को। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई जरूरत नहीं। तो राजा के पुत्र को बड़ा तकलीफ हुआ, उसको लगा कि मेरा फ्रेंड है सुन नहीं रहा है मेरा। तो मन में बैठ गया, अपने पिताजी के पास जाके कंप्लेंट कर दिया राजा को कि ये कैसा लड़का है, ये देवी के मंदिर में गया लेकिन प्रणाम नहीं किया इसने, अच्छा नहीं किया, आप बोलो उसको प्रणाम करने के लिए। तो राजा बोला ठीक है जाके बोलता हूं मैं। तो राजा ने बुलाया कुबेर पंडित को, कहा कि आपका लड़का क्या प्रार्थना वार्थना करता है नहीं, कुछ प्रणाम करना चाहिए देवी के मंदिर में जाके। तो बोलो आपके पुत्र को देवी के मंदिर जाके प्रणाम करो। तो कुबेर पंडित जाके बोले अद्वैत आचार्य को क्या हो गया, प्रणाम करो जाके। तो बोले नहीं नहीं मैं प्रणाम नहीं करूंगा, आवश्यकता नहीं मुझे प्रणाम करने की। क्यों आवश्यकता नहीं है, देखो मैं प्रणाम करूंगा ना ऊपर नीचे उल्टा सुलटा हो जाएगा कुछ। बोले कुछ नहीं हो प्रणाम करो। तो राजा ने बोला फोर्स किया प्रणाम करना पड़ेगा, ठीक है। अद्वैत आचार्य जाके प्रणाम किए। अब देखो अद्वैत आचार्य ये शिवजी का अवतार है ना, शिवजी और दुर्गा देवी का कनेक्शन क्या है, पति पत्नी का कनेक्शन है। तो क्यों दंडवत करेंगे पत्नी को, आज के सब बोलेंगे दंडवत करना चाहिए लेकिन ये हम लोग इधर का भौतिक दुनिया का बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का बात कर रहे हैं। तो शिवजी जो अद्वैत आचार्य थे उनको फोर्स किया गया, वो दंडवत किया और दुर्गा देवी की मूर्ति टूट गई पूरी अंदर से, दुर्गा देवी प्रकट हो गई और वहां से ओझल हो गई। फिर अद्वैत आचार्य मैंने बोला ना आप मुझे प्रणाम करें, मत बोला अभी इस गांव में हम नहीं रहेंगे। अद्वैत आचार्य छोटा बच्चे के रूप में थे, बोला कि पिताजी को यहां से निकलेंगे हम, क्योंकि ये गांव अभी नष्ट होने वाला है, यहां से दुर्गा देवी चले गई है, इस गांव का कुछ कई खरन है, क्या होगा इसका आगे। तो नवग्राम श्री हट से बाद में अद्वैत आचार्य, उनके पिता कुबेर पंडित और उनकी माता नाभा देवी ये शिफ्ट हो गए शांतिपुर धाम में, जो अभी मायापुर के बगल में है। जैसे अद्वैत आचार्य शिफ्ट हो गए, जैसे उन्होंने कहा था उसी तरह पूरा गांव उजड़ गया, कुछ रहा ही नहीं गांव में, वहां पर कुछ न कुछ एक भयंकर रोग पसर गया। वो राजा को पता चल गया कि ये मेरे अपराध के कारण हुआ है, वो जान लिया कि ये व्यक्ति जो है छोटा बच्चा है लेकिन बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ी हस्ती है, तो मैंने गलती किया कुछ। तो वो नवग्राम से भागते हुए आया शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया और माफी मांगी। अद्वैत आचार्य ने कहा कि कोई बात नहीं आप यहीं रुक जाओ अच्छा रहेगा आपके लिए, वहां कुछ रहे नहीं आपके लिए। तो पूरा परिवार के साथ में राजा फिर शिफ्ट हो गया नवग्राम शांतिपुर में। आगे चल के वो राजा ने जब अद्वैत आचार्य बड़े हुए उनसे दीक्षा भी ली। तो ये उनकी स्थिति है, अद्वैत आचार्य जी साक्षात जो है महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है। तो स्थिति के बाद दूसरा चीज अद्वैत आचार्य के बारे में जानना आवश्यक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अद्वैत आचार्य जी इनका क्या योगदान है इस गौड़ीय संप्रदाय में। तो उनका बहुत योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को यहां प्रकट जो है कराया है। तो ऐसे कहा गया है कि अद्वैत आचार्य जी इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए बड़ी दिव्य तपस्या पूजा की थी। चैतन्य चरितामृत तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का तीन अंतरंग कारण और तीन बाह्य कारण है, थ्री एक्सटर्नल एंड थ्री इंटरनल रीजंस। तो अंतरंग कारण हम देखेंगे नहीं अभी, वो गौर पूर्णिमा आएगा तो कोई लेक्चर बता देगा। बाह्य कारण, बाह्य रूप से क्यों भगवान चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर, अवतार क्यों लिया। देखो भगवान जब अवतार लेते हैं ना उसका कुछ कारण होता है, बिना कारण के भगवान नहीं आते हैं, बिना कारण के हम आ सकते हैं लेकिन भगवान नहीं आएंगे। इसीलिए हर साल अगर कोई भगवान का नया अवतार प्रकट हो रहा है महाराष्ट्र में, सोचना चाहिए ये भगवान को कुछ कारण होता नहीं कि बार बार आ रहे नीचे। संभवामी युगे युगे, हर युग में आते हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए। तो महाप्रभु को आना था कलयुग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए। युग धर्म क्या है, हरि नाम, भगवान के नाम का जप करना। आप देखेंगे कलयुग में सारे संत महात्मा कहां भी पैदा हुए हो सब ने घूम फिर के उधर ही आए हैं, वो भगवान का नाम लेना है। तुकाराम महाराज हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, या फिर दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य हो, कहां के भी संत हो, तत्व थोड़ा अलग होगा लेकिन जो साधन दिए है वो सेम है, हरि नाम। तो एक कारण था चैतन्य महाप्रभु के बाह्य प्राकट्यकरण का कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो दुष्टों का विनाश और जो भक्तों का संरक्षण करने के लिए। सुरक्षा देने के लिए। दूसरा कारण है कि वो युग धर्म की स्थापना करने आए, और तीसरा कारण है कि अद्वैत आचार्य जी ने उनको इतना प्रेम से पुकारा कि उनको आना ही पड़ा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तीनों कारण में सबसे मुख्य कारण है अद्वैत आचार्य जी ने बुलाया, इसलिए वो आए, अन्यथा वो अन्यथा कुछ और चीजों का भी वो एडजस्टमेंट कर सकते थे। भगवान है, कभी भगवान नहीं आते, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, भक्तों के द्वारा अद्भुत चीजों की प्राप्ति होती है, प्रचार होता है, लेकिन भगवान स्वयं ओरिजिनल स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उन्हें पुकारा था। तो ऐसा कहा गया है कि अद्वैत आचार्य जब शांतिपुर में जब बड़े हुए हो तो उनका विवाह वहां पर हुआ, व्हाट वाइफ नेम है, सीता ठाकुरानी उनकी पत्नी का नाम था। और ऐसा कहा है कि वो भागवत का प्रचार करते थे, गीता का प्रचार करते थे शांतिपुर में। उनका एक घर मायापुर में भी था, वहां भी आते थे, वहां भी प्रचार करते थे। उस समय लोग जो है बहुत सारे चीजों में व्यस्त थे, आध्यात्मिक नाम पर कुछ और चीजों में व्यस्त हो गए। देखिए आध्यात्मिक जीवन जो है ना, इसका मर्म जानना चाहिए। कभी कभी हम आध्यात्मिक चीजों में उसका एक्सटर्नल फैक्टर विधि विधान में इतना घुस जाते हैं कि उसका सार भूल जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में विद्यालय में जाने का सार क्या है, विद्या प्राप्त करना है, बराबर ना, कोई डाउट है। आप कहेंगे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि इसका कैंटीन अच्छा है बहुत, तो कैंटीन के थोड़ी जा रहे हैं आप, तो विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं ना। तो कुछ भी आप चीजों का जब सिलेक्शन करते हैं, खास करके शिक्षा के लिए, वो शिक्षण देख के सिलेक्ट करते हैं ना। तो उसी तरह आध्यात्मिक चीजों में भी उसका सार क्या है ये जानना आवश्यक है। एक संत का एक मैं कहानी बताता हूं आपको। एक संत महात्मा थे, वो देख रहे थे कि अपने समाज में जहां पर वो रहते थे वहां के लोग बहुत आध्यात्मिक चीज कर रहे थे, लेकिन विधि विधान में ज्यादा वो फंस गए थे, तो मर्म जो सार भूल गए थे। तो उसको एक सबक सिखाने सबके लिए, क्योंकि वो समाज के थे, वो उन्होंने एक प्रयोग किया, एक दिन एक्सपेरिमेंट किया। सुबह सुबह वो जो बड़ा एक समूह था वहां, वो दो बाल्टी बड़ा लेके आए अपने हाथ में। सबने कहा दो बाल्टी उठा के क्यों लेके आया, अचानक सोचे आप मंदिर में को दो बाल्टी उठा के लेके आएगा, तो बोला बाल्टी लेके क्यों आ गया है। तो बाल्टी लेके आ गए, वो लेक्चर के वजह बाल्टी खड़ा कर दिया उधर। तो लोगों ने पूछा प्रभु जी बाल्टी क्यों लेके आए। तो देखा बाल्टी में, एक बाल्टी में था अग्नि जल रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी, गर्म बाल्टी था, पूरा अंदर जल रहा था, और एक बाल्टी में पानी था। तो बाल्टी में जल रहा है और ये पानी है, करने क्या वाले प्रभु जी आप। बोले मैं इस दो बाल्टी से दो बड़ा काम करने वाला हूं, ये अंगार है, इस अंगार से मैं स्वर्ग को भस्म करने वाला हूं। बोले बापरे, और इस पानी से जो नर्क लोक में जो बहुत बड़ा अंगार लगा है इसमें लोग त्रस्त हो रहे उसको बुझाने वाला हो। नरक का मैं अग्नि बुझाने वाला हो और स्वर्ग में अग्नि जलाने वाला हो। सबने पूछा कि देखो सबने कुछ नरक का अग्नि कम करना उठी अच्छी बात है थोड़ा, लेकिन स्वर्ग में क्यों अग्नि लगा रहे हो। उन्हें कहा कि देखो आजकल सारे जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं, या तो वो स्वर्ग की प्रेरणा के लिए, प्रेरणा होते हुए वो आध्यात्मिक चीज कर रहे, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है कि नहीं, ये यज्ञ करूंगा, ये तप करूंगा तो मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा जन्म एंड कहाँ होता है, स्वर्ग में, उसका अच्छा अनुभव होना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति। इसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं हेवन, या फिर उर्दू में कहते जन्नत। आप देखिए सारा वही चल रहा है आजकल, कहीं भी बोलो जन्नत जाना है, हेवन जाना है कि नहीं, अच्छे लोगों में जाना है। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक चीज को लोगों ने एक ऐसा बना दिया है कि मुझे ये स्वर्ग जैसे सुख की प्राप्ति होनी है, या फिर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक करता है यह सोचकर कि आध्यात्मिक नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, नुकसान होगा, मैं नरक में जाऊंगा, यात्रा सहन करूंगा। तो आजकल की आध्यात्मिकवाद कैसे है, या तो सुख की भोग करना है या तो दुख को मिटाना है। तो ये संत महात्मा जी ने कहा कि ये दोनों भी कारण आध्यात्मिक चीज का नहीं है, आध्यात्मिकता का कारण कुछ और है। ये विधि विधान होंगे, इसका पालन करना होगा अपने जीवन में, लेकिन इसके परे भी कुछ एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा जब तक ये दो चीज को हम नहीं मिटाएंगे तब तक इसके ऊपर जो असली सिद्धांत है वो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। आध्यात्मिकता का मतलब भगवान के प्रति सेवा करना, सही है कि नहीं? जब किसी के प्रति आप सेवा करते हैं तो सेवा करते हुए क्या भावना होती है, क्या मिलेगा मुझे? देखिए आप सोचिए, आप किसी का भी सेवा कीजिए ये भावना से कि कुछ मैं उनसे लूंगा, उस व्यक्ति को पता चल जाएगी आपकी भावना क्या है, वो आपसे दूर रहेंगे, है ना? लेकिन बिना कुछ इच्छा के बस आपकी सेवा करना है, आपको पसंद करना है, ये भावना से जब सेवा करेंगे तो लोग आपको बड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, है ना? आप देखते हैं आप बाहर की दुनिया में रहते हैं, कोई व्यक्ति आपके आसपास बहुत घूमता है, बहुत फोन करता है आपको, बहुत वेरीफाई करता है, आप कितने अच्छे मानता हो, बहुत अच्छा घर लिया आपने, ये किया, तो आप समझ जाते हैं कि इसको कुछ चाहिए मुझसे, इतना बोल रहा है मेरे बारे में, है ना? सही है ना? तो ऐसे व्यक्ति से क्या करते हैं आप, बड़ा प्रेम करते हैं आप, उसको शायद अप्रिशिएट करेंगे लेकिन दूर रखेंगे, ठीक है ठीक है। इसीलिए आजकल रिश्तों में, घर में खास करके, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनमें ये भावना जब आती है ना, मला काय मिले, मुझे क्या मिलेगा, तो वो पूरा जो रिश्ता जो है ना वो बहुत ढीला ढाला रिश्ता हो जाता है। फैमिली में काय मिले नहीं, मी काय देना रहे, ये होना चाहिए परिवार में, ऐसा होना चाहिए। या फिर कहीं भी हम रहते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, वहां पर भी यही चीज होना चाहिए। तो भगवान के पास भी जब आते हैं तो भगवान के पास आकर मांगने की वृत्ति होती है, भगवान मैंने ये, भगवान मेरा ये काम कर दो, है कि नहीं? या भगवान मेरा ये हाथ से गलती हो गया, उसको माफ कर दो, माफ कर दो और काम कर दो। ये चलता रहेगा तो भगवान के बोलेंगे ठीक है, तुम तुम्हारे काम में, मैं मेरे धाम में, है कि नहीं? कम से कम होगा काम। लेकिन भगवान की सेवा के हेतु में आते हैं, भगवान आपने बहुत दिया है, बहुत सारे विकट संसार, विकट परिस्थिति से बचाया मुझे आपने, आपका बड़ा आभारी हूं, आपकी सेवा चाहिए। तो देखिए हम भगवान तो कृपालु, सबको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है ना, इसलिए भगवत्ता में कहते हैं कि भक्तों में भी अलग अलग श्रेणी है, मध्यम लेवल का भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, एक शुद्ध भक्त है। तो अलग अलग प्रकार के भक्त के हिसाब से भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। तो अद्वैत आचार्य जी, इनका जीवन का लक्ष्य था कि चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करना, और चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के बाद आध्यात्मिकता का जो सार है, जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, इसको जो है प्रस्ताव, ये जो स्थापित करना इस संसार में। तो अद्वैत आचार्य जब वो प्रचार कर रहे थे गीता और भागवत पर, तो उन्होंने देखा कि लोग आध्यात्मिकता को भूल चुके थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लोगों को प्रचार करने का, जितना प्रयास किया लोगों ने उनकी अवहेलना की, भक्तों की अवहेलना होती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं हरे कृष्ण वाले। हम सोचते कि आज ही हरे कृष्ण वालों को बोलते होंगे बहुत लोग, ऐसा नहीं, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु को भी बोलते थे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हो, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, बीटीजी मैराथन में भाग ले रहा हो, तो लोग क्या म्हणणार मला, है कि नहीं, आले आमच्या घरी, है कि नहीं? तो डोंट वरी, ये जो चीज पहले से चल रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप परंपरा में है। प्रभुपाद जी ने भी यही किया है, इसलिए तो इतना बड़ा हरे कृष्ण मंदिर खड़ा हो गया इधर, हम लोग बैठे हैं यहां पर प्रवचन सुन रहे हैं। तो ये परंपरा है, नॉर्मल चीज है। अद्वैत आचार्य के जीवन में भी ये परिस्थिति आई थी, लोग सुनने रहे थे उनको। कौन थे अद्वैत आचार्य? शिव जी, महाविष्णु, तो ये भी लीला है भगवान की। तो भगवान सोचे कि कलयुग में तो बिल्कुल ओरिजिनल पावर लेके आना पड़ेगा नीचे। अभी तो अद्वैत आचार्य जी शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, शास्त्र अध्ययन में उन्होंने एक शास्त्र का एक शास्त्र में पढ़ लिया कहीं तो गौतम तंत्र में कि भगवान अपने आप को उस भक्त के प्रति भेज देते हैं, अपने आप को सौंप देते उस व्यक्ति को जो व्यक्ति बस तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की सेवा करे। ये सुन लिया बस अद्वैत आचार्य ने कहीं पढ़ लिया तो उन्होंने कहा बस और क्या चाहिए। गंगा के तट पर बैठ गए, उनके पास एक सुंदर शालिग्राम शिला थी, नरसिंह शालिग्राम शिला, वहां पर लेके बैठ गए और उन्होंने गंगा जल मिला उनको गंगा के द्वारा और तुलसी को अर्पण करते हुए पूजा आरंभ की। ऐसे कहा गया है कि उनकी पूजा सीमित नहीं थी, पहले उन्होंने पूजा की, बाद में उन्होंने वंदना की, उसके बाद देख उन्होंने वंदन को भी एकदम तीव्रता से, जैसे कोई पुकारता है ना तो पुकारा भगवान को, पुकारने के बाद और एक दर्जा ऊपर हुंकार, ऐसे डेस्परेटली पुकारा कि मानो और कोई चारा ही नहीं है। इतना जोर से उन्होंने भगवान को पुकारा कि भगवान आपके बिना नहीं होने वाला, आपको आना ही पड़ेगा। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए चैतन्य नीताय। अद्वैत आचार्य जब हुंकार किया, उनके हुंकार का जो ध्वनि था पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया, ब्रह्मांड को पूरा भेदता हुआ आध्यात्मिक जगत में गया जहां चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु को खींच कर लेके आया, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, जाना ही पड़ेगा मुझे, अद्वैत आचार्य बुला रहे हैं। इसलिए भगवान स्वयं फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी प्रकट होना पड़ेगा नवद्वीप में, अद्वैत आचार्य जी का जो है आह्वान है यहां पर। तो इस तरह से उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्वैत आचार्य के बारे में कहते हैं आगे चल के छठे अध्याय में कि ये नाम अद्वैत आचार्य क्यों पड़ा, अद्वैत आचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट। भगवान का नाम भी जो है नामकरण वो ऐसे होता नहीं, उसके पीछे कारण होता है, उनके गुण होते हैं, है ना। भगवान का नाम गोविंद है, क्यों नाम है, ऐसे कोई नाम रख दिया नहीं है, उनका गुण है गोविंद और गोपाल, मुरलीधर, गोपीनाथ, सब नाम है भगवान का। अद्वैत आचार्य नाम क्यों पड़ा, अद्वैत, द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी दो नहीं एक ही है। अद्वैत आचार्य ये भगवान से अभिन्न है, भगवान ही स्वयं अद्वैत। और आचार्य क्यों है, क्योंकि ये अद्वैत अविभक्त के रूप में आए और अपनी आचरण से वो सिखा रहे हैं आचार्य, इसलिए उनका नाम पड़ा अद्वैत आचार्य। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं अपने लेक्चर में, तो ये पांच तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इसमें से तीन भगवान के रूप है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। वो कहे महाराज कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास लिया, नित्यानंद प्रभु वो हमेशा अवधूत वेश में थे, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अनुगमन कोई नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। संन्यास लेकर पूरा देश घूमना, हरिनाम करना, प्रचार करना, किसको जमने वाला है, किसी को जमने, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। नित्यानंद प्रभु ऐसा है, उनका जो तत्व है उनका भी अनुगमन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। नित्यानंदपुर तो कहीं भी चुप हो जाते थे वो प्रचार करने के लिए। नित्यानंदपुर ने एक बार जगाय मधाई को देखा, जो जगाय मधाई ये जो बड़े असुर कुल असुरी व्यक्ति थे, काफी उनका नाम था, सारे पुलिस चौकी में वो वांटेड थे उस समय के, तो उनके पास जाके उनको कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। सोचिए आप, अभी उनको कौन फॉलो कर पाएगा, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको ज्वाइन करना है क्या अद्वैत नित्यानंद प्रभु के टीम को, वो प्रचार करने के लीडर है, आप उनके साथ में जुड़ जाइए। बोला ठीक है, नको नको, दूसरा कौन आएगा, कोई आप पार्टनर चले, दूसरा कोई चलेगा, ऐसे व्यक्ति से कैसे जुड़ जाएंगे आप, क्यों नित्यानंद प्रभु ऐसा डिफिकल्ट है बहुत, किसी को भी रोक के किसी को प्रचार करते थे, किसी को भक्त बना देते। तो नित्यानंद प्रभु का अनुगमन करना बहुत कठिन है, चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन नहीं कर सकते, अद्वैत आचार्य का अनुगमन कर सकते थे। जो अद्वैत आचार्य जो है गृहस्थ आश्रम में थे, और उसके बाद उनके पास एक परिवार था, वो अपने जो कुल में जो थे उसमें लीडर थे, ब्राह्मण परिवार के वो लीडर थे, वो हमेशा लीडर है। हरे कृष्ण थे लेकिन लीडर भी थे अपने ब्राह्मण परिवार के, जहां पर भी पैदा थे, जहां पर भी कुल था उनके लीडर थे। और उन्होंने लीडरशिप में अपने जो परिवार में जो लीडर थे उसके सारे विधि विधान को फॉलो किया, लेकिन कृष्ण भक्ति के आड़ में। जैसे ब्राह्मण थे तो उनको अपने पिता का माता का श्राद्ध करना था, तो श्राद्ध किया, कृष्ण कॉन्शियस वे में किया। कैसे किया? सारे ब्राह्मणों को बुलाया, हरिदास ठाकुर को भी बुलाया, जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए थे, मोहम्मदन परिवार से उनका जन्म था लेकिन वो बड़े भक्त थे, उनको बुलाया। और उनको बुलाने के बाद सारे ब्राह्मणों के पहले उनको प्रसाद खिलाया, बोले ये सच में ब्राह्मण है। इसे कहते हैं कि जो समाज का जो नियम था वो फॉलो किया, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस से फॉलो किया, उसको कृष्ण भावना भावित बना दिया। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य ये नाम उनका पड़ा। उसके बाद हम क्या सीख सकते हैं अद्वैत आचार्य जी के जीवन में? हमने कहा आचरण करना चाहिए उनका। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हम दो या तीन चीज सीख सकते हैं अद्वैत आचार्य के जीवन से। सबसे पहले सीखना चाहिए अद्वैत आचार्य जी के जीवन से कि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे पूरे संप्रदाय में। महाप्रभु के समय चैतन्य महाप्रभु थे और पूरा वैष्णव सभा था वहां पर, है कि नहीं? कौन कौन थे वहां पर? जगन्नाथ मिश्र, सची माता तथा फिर नंदन आचार्य और मुरारी गुप्त, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये सब थे वहां पर। पुंडरीक विद्यानिधि सबसे अग्रज थे भक्ति में भी और उम्र से भी अद्वैत आचार्य। चैतन्य महाप्रभु जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, उनसे भी बड़े थे एज में। मैं आपको बताया ना कि चैतन्य महाप्रभु जब उनका जन्म हुआ उस समय अद्वैत आचार्य जी का उम्र था 52 इयर्स, 52 साल के थे वो, और उनका जीवन चला 125 इयर्स, 125 साल तक। 25 साल चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर अद्वैत आचार्य का जो है तिरोभाव हुआ। तो इतने सीनियर थे फिर भी उनका जीवन देखना चाहिए कि हमेशा वो स्थान हमेशा नीचे का स्थान लिया उन्होंने। उनके वहां क्षमता थी प्रचार करने का लेकिन वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अग्रस्त स्थान दिया। तो ये सीनियरिटी था। तो ऐसे कहा गया है कि सारे भक्तों को सीखना चाहिए कि इतने सीनियर होने के बाद भी वो हमेशा एक दास, एक जो है सेवक की भावना में थे, है कि नहीं? ऐसे उदाहरण के रूप में अक्सर ऐसा होता है कुछ दिन आप मंदिर में रेगुलर आए, स्टार्टिंग में तो हमको लगता है कि हम सब जो है सेवा करना चाहिए, बाकी सब लोग जो प्रभु जी है माता जी दंडवत प्रणाम करते हैं। कुछ महीनों के बाद हम सबको दंडवत प्रणाम करना भूल जाते हैं, कभी कभी करते कभी कभी भूल जाते हैं। कुछ साल होने के बाद दंडवत प्रणाम बोलते हैं मुझे कोई नहीं करने रहे, अपेक्षा हो जाती है कितने साल से मैं आ रहा हूं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है अरे आप क्या प्रभु जी आप 3 साल से आए, कब कब से मंदिर में आ रहे हैं? 3 साल से। अच्छा कोई बात नहीं, 5 साल से मैं आ रहा हूं, ये मुंह से निकल जाता है कि नहीं? तो ये देखो कभी इच्छा नहीं होती बोलने की लेकिन निकल जाता है, क्योंकि अंदर भरा है वो ना, वो अभिमान भरा है कि मैं थोड़ा सीनियर हूं। कभी कभी किससे पूछो कि आप कब आए, आपकी रिक्शा कब हुई, मेरी रिक्शा जन्माष्टमी हुई। जन्माष्टमी कौन सी जन्माष्टमी? 2010 जन्माष्टमी हुई। अच्छा मेरी रिक्शा गौर पूर्णिमा 2010 में हुई, मैं आपसे 3 महीना सीनियर हूं। तो ये सब चलते रहता है वैष्णव सभा में। तो हमें अद्वैत आचार्य के जीवन सीखना चाहिए, सबसे वो सीनियर थे एज में भी, उम्र में भी और भक्ति में भी, लेकिन हमेशा उन्होंने निम्न स्थान लिया। वो एक इंपॉर्टेंट चीज अद्वैत आचार्य अपने जीवन से सिखा रहे। दूसरा है कि अद्वैत आचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया लेकिन स्वयं अपने आप को वो चैतन्य महाप्रभु का हमेशा दास मानते थे। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो 50 साल उम्र बड़े थे भगवान के अवतार थे, लेकिन अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो अपना एक अभिमान था उनको, दास अभिमान। क्या अभिमान था? दास अभिमान। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अपने पर अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान शब्द अच्छा नहीं है, है कि नहीं? प्राइड, अभिमान, ये शब्द अच्छा नहीं है। हमें अपने आप पे अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कनेक्शन पे अभिमान होना चाहिए कि हम किससे कनेक्शन हमारा है। हमारा कनेक्शन श्री प्रभुपाद जी से, इस पर अभिमान होना चाहिए। हमारा कनेक्शन इस्कॉन के साथ में, इस पर अभिमान होना चाहिए। हमारा कनेक्शन गौड़ीय संप्रदाय से, इसमें अभिमान होना चाहिए। हम कितना भी गिरे हो, तुच्छ हो, लेकिन हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है। अद्वैत आचार्य जी अपने आप को निम्न मानते थे, लेकिन उनका अभिमान था कि मैं किसका दास हूं? चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। तो इस अभिमान से अद्वैत आचार्य जी ने अपना मनसा काया वाचा तीनों को अर्पण किया महाप्रभु की सेवा में। वाचा से हमेशा वो कहते थे कि मैं कौन हूं? श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूं मैं। मन में हमेशा वो ही सोचते थे कि मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूंगा। तो मुंह से बोल रहे कि मैं सेवा करूंगा, दास हूं मैं, मुंह से दास बोल रहे हैं, मन में सेवा करूंगा बोल रहे हैं, और बॉडी से सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे? सेवा कर रहे थे। कभी कभी हमारा दो फॉलो होता है, हम बोलते हैं और मन में सोचते हैं, लेकिन सेवा आती है तो फिर भूल जाते हैं, है ना? अद्वैत आचार्य जी अपने काया, अपने शरीर से भी सेवा कर रहे थे। वो स्वयं अपने घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की पूजा करते थे, तुलसी जल चढ़ाते थे, तथापि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रसार प्रचार करने में वो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, प्रचार कर रहे थे वो। इस तरह से काया मनसा वाचा के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अद्वैत आचार्य ने दास अभिमान इसको प्रकट किया। अंत में एक और शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं अद्वैत आचार्य के जीवन से, वो है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य जी को बहुत आदर सत्कार करते थे। जब भी उनको मौका मिलता था, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के चरण को छूते थे। अद्वैत आचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो क्या कहते थे अपने आप को कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। तो ऐसे देखते थे कि अद्वैत आचार्य, उनका उम्र काफी बड़ा था, चैतन्य महाप्रभु काफी यंग थे, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु हमेशा जीत जाते थे उनका चरण का धूलि लेने में। तो अद्वैत आचार्य जी बड़े दुखी थे इसके कारण कि भगवान जो है, मैं उनका दास हूं, लेकिन वो मेरा चरण का धूलि ले रहे, क्योंकि मैं जो शरीर से उनसे वृद्ध हूं, उम्र में सीनियर हूं, और चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके वो गुरु भाई थे, इसलिए इतना वो आदर दे रहे हैं, लेकिन मैं उनका जो है दास हूं। ये सिद्ध करने के लिए अद्वैत आचार्य ने सबको दिखाने का कि कैसे चैतन्य महाप्रभु मेरे सीनियर है, सुपीरियर है, इसलिए अद्वैत आचार्य ने एक अद्भुत प्रकार की लीलाएं की। एक लीला उन्होंने ऐसे की कि वो मायापुर में जब थे, जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा आदर सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य बिना बोले वो मायापुर छोड़कर शांतिपुर चले गए। शांतिपुर जाने के बाद अद्वैत आचार्य ने एक ऐसी चाल चली, उन्होंने शांतिपुर में सबको न्योता दिया, बड़ा एक पंडाल प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में वैष्णवता को, सिद्धांत को खंडन करते हुए मायावाद का उन्होंने प्रचार किया। तो ये समाचार जब हरिदास ठाकुर जी वहीं पर थे बगल में, उनका वहां पर निवास स्थान था, वो जब देखे कि अद्वैत आचार्य इतने बड़ा माइक तो नहीं था उस समय, सबको जमा करके मायावाद प्रचार करे, तो वो बहुत हंसने लगे, बोले कुछ तो कारण है, तो अद्वैत आचार्य जी क्यों ये सब करेंगे, कुछ तो आगे आगे देखो होता है क्या, है ना? तो ये समाचार पहुंच गया मायापुर में, किसी ने कहा चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, मायावाद का प्रचार किए। महाप्रभु बड़े आग उबले हो गए, इस व्यक्ति ने मुझे बुलाया ऊपर से गोलोक वृंदावन से प्रचार करने के लिए, और अभी ये खुद मेरा उल्टा प्रचार कर रहा है। तो महाप्रभु क्रोध में आके आए, वो मायापुर से शांतिपुर आए, नित्यानंद प्रभु के साथ में आए। नित्यानंद प्रभु कहा जाके देखो आगे क्या कर रहे हो, तो नित्यानंद जाके देखे और सुनाया, आंखों देखा हाल, मायावाद का प्रचार कर रहा है, योग वशिष्ठ के उस पर जो टीका कर रहे हो। तो महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, भाग के गए, व्यासासन से अद्वैताचार्य को नीचे उतारा और उनको मारने लगे। तो अद्वैताचार्य की पत्नी चिल्लाने लगी, महाप्रभु मारिए मत, वृद्ध व्यक्ति है। लेकिन महाप्रभु क्रोध में थे, सीता ठाकुरानी माता दुखी थी, लेकिन अद्वैताचार्य जो मार खा रहे वो सुखी थे, हंस रहे थे। वो हंसते हंसते बोल रहे सबको, महाप्रभु देखो देखो, महाप्रभु ने आज स्वीकार कर लिया कि वो मुझसे सीनियर है, इसलिए तो मार रहे हैं मुझे। सीनियर ही मारेगा जूनियर को ना, कि जूनियर मारेगा सीनियर को, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेकिन सीनियर मान लिया कि नहीं चैतन्य महाप्रभु ने। तो जब महाप्रभु ने देखा कि ये अद्वैत आचार्य की बड़ी चाल थी, तो महाप्रभु बड़े क्या कहते हैं इनको, शर्मनाक बात जो भी हुई, फेल्ट वेरी शाय। इसके बाद और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ आगे चल के, और एक बार ऐसे हो गया तो महाप्रभु को न बताते हुए अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए। और एक बार इस बार चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अद्वैत आचार्य को मेरा जो है अर्चना करना है, पूजा करना है, लेकिन मैं उनको सत्कार दे रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने भगवत्ता का जो है वो प्रमाण दे रहे, सारे भक्तों का इच्छा पूरा कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने श्रीवास ठाकुर के जो भाई है रमाय ठाकुर, रमाय पंडित, उनसे कहा जाओ शांतिपुर जाओ और अद्वैत आचार्य को मेरा संदेश दो कि मैं यहां वेट कर रहा हूं उनकी पूजा और अर्चना ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो रमाय पंडित जाके बोले, तो अद्वैत आचार्य ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु उनको बुला रहे उनकी पूजा करने के लिए, तो अद्वैत आचार्य बड़े खुश हो गए, उनकी पत्नी सीता देवी भी खुश हो गई। तुरंत वहां से वापस फिर मायापुर में आए रमाय पंडित के साथ में, लेकिन रमाय पंडित को कहा कि अभी मैं आपके साथ महाप्रभु को मिलने नहीं आऊंगा, मैं यहां पर एक भक्त है नंदन आचार्य, उनके घर में छुपूंगा मैं। आप महाप्रभु को बोलो कि अद्वैत आचार्य आ गया मायापुर में, लेकिन मुझे पता नहीं कहां पर है वो, कहां चले गया पता नहीं, कहीं तो छुप गया है। तो रमाय पंडित जी जाके बोले कि महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी आ गए लेकिन कहां है पता नहीं, छुप गए कहां पर। महाप्रभु ने कहा जहां मुझे मालूम है कहां छुपे हो, जाओ नंदन आचार्य घर पे जाओ और बोलो कि मैं जान लिया हूं कहां पर है, आइए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, यहां सिंहासन में बैठा हूं, मैं आपकी पूजा ग्रहण करना चाहता हूं। तो ऐसे कहा गया कि अद्वैत आचार्य बड़े खुश हो गए और आए और उन्होंने अपने मन से बड़े जितना प्रेम था उनको उससे उन्होंने और उनकी पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु का जो है अर्च वगैरह चैतन्य महाप्रभु का जो है अर्चना किया, पूजा किया। तो महाप्रभु बड़े खुश होकर कहे अद्वैत आचार्य से, आपको क्या मांगना है मांगो आज, व्हाट डू यू वांट। तो ऐसा कहा गया कि अद्वैत आचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, सब कुछ आपने दिया है, प्रेम दिया है, भक्ति दी, सेवा दी है। ये एक भक्त का लक्षण होता है कि नहीं, भगवान देखो, भगवान बोल रहे भक्त को, बोल क्या चाहिए। तो भक्त क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिया है आपने। मैं सोच रहा था इसको उदाहरण को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो भगवान हमको क्यों पूछते नहीं, तू लगाए पाजे क्यों मालूम है, लिस्ट निकालेगा अपना तो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी सारी इच्छा वो देखते हैं एक्चुअली कि ऑलरेडी जो मेरे जीवन में हो रहा है वो कहां से हो रहा है। देखो हमारा एक विचार ऐसा है, गलत विचार है, कुछ गलत हो गया तो बोलते भगवान ऐसा क्यों किया आपने, अच्छा हो गया तो भगवान मैंने सब किया है। तो अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेते, बुरा होता है तो भगवान को देखते हैं। ये हमारा जो है विजन खराब है, हमारा गलत विजन है, गलत हमारा नेत्र नेता क्या बोलते एक देखने का एक तरीका है। फिर महाप्रभु ने आग्रह किया अद्वैत आचार्य को, आप बताइए कुछ क्या मांगिए। तो अद्वैत आचार्य ने दो चीज मांगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे आप ये मुझसे मुझे यही मेरा एक आपके लिए एक निवेदन है कि जो हरे कृष्ण मंत्र आप प्रचार करें नवद्वीप में बैठकर, वो सारे जीवों को आप बांटिए, आपके जो अवतार का जो सक्सेस है वो कब होगा, जब आप पूर्ण विश्व भर में इस हरिनाम के संदेश को आप बांटेंगे। अभी ये संदेश कहाँ चल रहा है, नवद्वीप में हो रहा है, पूरे विश्व भर में आप सारे जीव जंतु को बांटिए। लेकिन महाप्रभु उन लोगों को मत बांटिए जो भक्त के द्वेषी है, जो भक्ति के द्वेषी है, भक्तों के द्वेषी है, उनको मत बांटिए, इनको उनसे दूर रखिए, लेकिन बाकी सबको बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप बांटिए। तो ये महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया। अब अद्वैत आचार्य का रिक्वेस्ट कौन कैसे नहीं मानेंगे महाप्रभु जी। उसके बाद अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैंने आपका विश्वरूप का बड़ा वर्णन सुना है, जो आपने अर्जुन को बताया था, मुझे आपके विश्वरूप का दर्शन देना है। तो भगवान ने वहां पर पूरे विश्वरूप का दर्शन कराया अद्वैत आचार्य को। दो बार वर्णन आता है कि विश्वरूप दर्शन हुआ है, एक बार अद्वैत आचार्य ने अकेले देखा, दूसरे बार नित्यानंद प्रभु के साथ में देखा। और हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि क्यों विश्वरूप का दर्शन कराया, क्यों चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो भक्त के रूप में, उनकी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए अद्वैत आचार्य ने ये विश्वरूप दिखाने का उनको जो निवेदन किया, ताकि विश्वरूप दिखाएं तो फिर भगवान प्रूव हो जाएंगे कि ये एक्चुअली स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो भक्त के रूप में अभी आए हैं। इस तरह से अलग अलग रूप से हम अद्वैत आचार्य के जीवन से सीख सकते हैं, कैसे उनको इतना मान सम्मान दिया, फिर भी उस मान सम्मान को न लेते हुए उनकी एक ही इच्छा थी को भगवान की खुद सेवा करे। ऐसे अलग अलग बहुत लीला है अद्वैत आचार्य के जीवन पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला मैं अभी आपको कहूंगा। इस लीला में श्रील प्रभुपाद जी का भी समावेश है। हम श्रील प्रभुपाद जी से बहुत करीब से जुड़े हुए, हम इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यहाँ पर हम सब कार्यरत है, सेवा कर रहे, भाग ले रहे भक्ति के सेवा पूजा में। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ही हमें एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है। तो प्रभुपाद जी और अद्वैत आचार्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। वो संबंध ऐसा है कि चैतन्य अद्वैत आचार्य जी के जो जहां पर शांतिपुर में आज मंदिर है, उस मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी, एक समय जब श्रील प्रभुपाद जी की स्थिति ठीक नहीं थी, प्रचार के लिए उनको कुछ उनके पास कार्यकलाप नहीं थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, कोई नहीं उनके पास था, उनके परिवारगण भी नहीं थे, और यहां से आध्यात्मिक रूप से कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके मन में एक ज्वलंत आशा थी कि मेरे गुरु महाराज ने जो कहा है वो सिद्ध होगा। उन्होंने मुझे दो तीन बार कहा, एक ही चीज बार बार कहा, इसका मतलब मुझे अपने पर विश्वास नहीं लेकिन गुरु महाराज पर विश्वास है, कैसे होगा पता नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी रेगुलरली अद्वैत आचार्य जी के मंदिर में शांतिपुर जाते थे और उनके मूर्ति के सामने, उनके विग्रह के सामने बहुत प्रार्थना करते, जप करते थे। तो वहां एक पुजारी थे, तो वो वहां की पूजा करते थे। तो पुजारी है तो देखता होगा रोज मंदिर में कोई ना कोई आ रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आता था मंदिर में, वो दर्शन लेके कोने में बैठ के जप करता था घंटों भर। और जिस तरह से जप करता था, तो किस ये पुजारी तो अकेले थे उस मंदिर में, उस समय छोटा मंदिर है, तो उन्होंने कभी इच्छा नहीं की कि जाके उनसे बात करो, क्योंकि इतना अच्छा जप कर रहे थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मुझे कहे कुछ तो काम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए आए हैं, इनको जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आते थे वो घंटों भर जप करते थे, और जब करते करते कभी कभी उनके आंखों में आंसू भी दिखते थे वो, और निकलते निकलते वो धन्यवाद कहते थे और निकल जाते थे, बस ऐसे बार बार करते थे। एक वृद्ध व्यक्ति बोले कि एक वृद्ध व्यक्ति आते थे, वो कपड़े उनके सफेद थे, धोती कुर्ता में आते थे, फिर कुछ दिन कुछ समय आते रहे, फिर अचानक उनका आना बंद हो गया। फिर अचानक एक दिन एक सन्यासी आ गए और बिल्कुल उसी स्थान में बैठे और जप कर रहे, उसी श्रेणी में, उसी शैली में जप कर रहे थे वो। तो देखा पास में, ये तो वो व्यक्ति है जो इतने बार आया यहाँ पर, आज झंडा लेके आया, सन्यासी रूप में आ गया, प्रणाम किया और कहा कि आपको बार बार देख रहा हूं, आते हैं आप यहाँ पर, आज आप सैफरन में आए हैं, आपका नाम क्या है? तो उस समय उनका उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति वेदांत स्वामी और मैं जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का एक छोटा निम्न एक शिष्य हूं, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने बहुत बड़ा मिशन मुझे दिया है। और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गया है, उनकी बड़ी इच्छा है। उन्होंने उनके जाने के पहले भी मुझे कहा था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, तो मुझे पता नहीं कैसे करूंगा मैं, मुझे बिल्कुल कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, आप यहाँ के पुजारी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर अद्वैत आचार्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया है उनका यह स्थान है। इसी स्थान में अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठते थे, वो स्थान भी उधर है अभी। वहां बैठकर उन्होंने प्लानिंग किया था पूरे विश्व भर में संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए यहाँ आके प्रार्थना करता था मैं। कल जो है कलकत्ता से एक जहाज से, पानी के जहाज से मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कैसे क्या होगा उधर, तो आप प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने गुरु का जो आदेश को मैं जो है यशस्वी या फिर जो सक्सेसफुल कर पाऊंगा। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की और कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके प्रभुपाद जी निकल गए। फिर कुछ समय कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कुछ सालों के बाद उन्होंने देखा कि अचानक शांतिपुर में अंग्रेज भाषा बोलने वाले, अंग्रेज जो शरीर से जो पाश्चात्य देश थे वेस्टर्न पीपल, वो तिलकधारी धोती कुर्ता साड़ी पहनते हुए वहां पर थोड़े थोड़े पैमाने पे आने लगे। तो बड़ा अचंभित हो गए, अरे तो बंगाली लोग को देखा था मैं, उड़िया बंगाली लोग को यहाँ पर, ये कौन आ गए यहाँ पर? तो हरे कृष्ण बोल रहे, अमेरिकन लग रहा है, कोई यूरोपियन लग रहा है। तो बड़े अचंभित हो गए। तो थोड़े थोड़े लोग आने लगे। अभी उस समय मुझे मालूम है श्री प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण आंदोलन में दो चीज कहा था, किताब वितरण और बीटी जी का वितरण करने कहा था। तो वो डिवोटी एक बीटी जी का पूरा स्टॉक लेके आ गया इधर, और उसने उस पुजारी को बीटी जी बांट दिया। बीटी जी खरीदो, अच्छा आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद खोला तो सबसे पहले अंदर पेज पे किसका फोटो, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिनको मैंने यहां पर देखा था। तो बड़े खुश हो गए, इतना खुश हो गए। उन्होंने पढ़ने के, हम सब नीचे लिखा था मायापुर हेडक्वार्टर से नवदीप धाम, वहां फिर वहां गए, वहां जाके वहां भक्तों को बुलाया, कहा कि इनको मैं जानता हूं, पूरा स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया वो उनको सुनाया भक्तों को। तो हम देखते कैसे है श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील अद्वैत आचार्य का बड़ा प्रार्थना किया, उनका बहुत नमन किया ताकि उन्हें पूरी तरह सशक्त हो जाए वो गौरांग महापुरु का आंदोलन जो है फैलाने के लिए। तो अद्वैत आचार्य के जीवन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन छात्र में बहुत कुछ है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में क्या कि अद्वैत आचार्य जी की जो लीला है या उनके गुण को हम बिल्कुल जो है हम ज्यादा अपने क्षमता से कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अनगिनत गुण है, अनगिनत लीलाएं हैं। तो श्री अद्वैत आचार्य की ये सुंदर कहानी यहाँ पर हमने लीला आज सुनाई तत्व के हिसाब से। तो इसलिए से मैंने पहले कहा था कि 64 आइटम है, 64 आइटम्स। इसलिए प्रत्येक भक्त को हर एक तिथि को बड़े गंभीरता से उत्सुकता से उसे फॉलो करना चाहिए। वो एकादशी व्रत हो या आचार्यों की जयंती हो, पुण्यतिथि हो या फिर कोई महोत्सव हो। तो आज बड़ा अच्छा दिन, पावन दिन है और अभी दिन खत्म भी हो रहा है लेकिन अभी भी कुछ चांस है, हम थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं। जितना इतना कम से कम समय में सबसे ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं। कलयुग के लोगों का एक लक्षण अच्छा है, वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेने की इच्छा करता है। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है ना। तो इसलिए आपका समय कम है, सोने के पहले थोड़ा समय भी है, कोई 12 बजे होता होगा, कोई 11 बजे होता होगा, रात को एक दो घंटे और है। अच्छा जप कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए और अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा ये नया साल जो है वो भक्तिमय कृष्ण भावनामृतमय बना रहे और सेवा से भरपूर हो। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं जब बीटी जी के बारे में बोल रहा था, बैक टू गॉड मैगजीन के बारे में, तो उसमें बता रहा था कैसे वो भगवत धाम मैगजीन उनको मिला। उस मैगजीन से उन्हें पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कार्य किया है। तो इस मंदिर में अनेक कार्य हो रहे हैं, इसमें से एक सुंदर कार्य जो होता है हर साल वो है बीटी जी मैगजीन का मैराथन होता है। मैराथन का मतलब कि एक महीने के लिए भक्त पूरा अथक प्रयास कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मासिक भगवत धाम जाऊ देवाचा गावा बैक टू गॉड के बारे में लोग को मालूम पड़े। तो अब तक मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में या पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बैक टू गॉड मैगजीन कौन से मंदिर से जाता है बताइए? चौपाटी? बिल्कुल नहीं, इस्कॉन निगड़ी हरि बोल। तो एक में नंबर वन है आप, है एक चीज में आपका नाम बहुत है, वो है बैक टू गॉड मैगजीन में। तो आपको नाम नंबर रखना है कि नहीं रखना है? ठीक है, तो आपको कैसे नंबर रखना है इसकी जानकारी आगे यहाँ जो बीटीजी वाले जो हमारे इंचार्ज है जड भरत थ्रू बताएंगे। हरे कृष्णा।